एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। जब हम परिवार शब्द के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक महफूज जगह है ना?
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा ठिकाना जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं।
सही, लेकिन क्या हो अगर वही प्यार एक जहर बन जाए, अगर परिवार ही एक ऐसा पिंजरा बन जाए जहां आपका दम घुटने लगे?
आज हम एक ऐसे ही उपन्यास पर बात करने वाले हैं।
हाँ, क्रिस्टीना स्टेड का 1940 में आया उपन्यास द मैन हु लव्ड चिल्ड्रन। ये एक ऐसी किताब है जो परिवार की इसी पवित्र तस्वीर को तोड़कर उसके पीछे का अंधेरा दिखाती है।
और वैसे इस किताब का सफर भी इसकी कहानी जितना ही अजीब रहा है।
ओह, वो कैसे?
जब ये छपी थी तो ये पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी, मतलब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया।
अच्छा।
हाँ, लगभग 25 साल तक ये गुमनामी में पड़ी रही। फिर 1965 में एक बहुत मशहूर कवि आलोचक थे, रैंडल जेरल।
हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में।
उन्होंने इसके लिए एक जबरदस्त भूमिका लिखी और रातों रात ये किताब 20वीं सदी के सबसे जरूरी उपन्यासों में से एक बन गई।
कमाल है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो इतना बेचैन करता है और साथ ही इतना जरूरी भी लगता है।
तो कहानी का दिल है पॉलिट परिवार, जो वॉशिंगटन डीसी में रहता है, और इस परिवार का केंद्र है इसका मुखिया सैम पॉलिट।
सैम पॉलिट, किताब का शीर्षक उसी पर है, वो आदमी जो बच्चों से प्यार करता था।
और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना व्यंग्य है,
क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए तो सैम एक कमाल का इंसान है, एक सरकारी वैज्ञानिक, आदर्शों की बातें करने वाला,
और सबसे बढ़कर वो खुद को दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पिता मानता है।
लेकिन ये जो प्यार है, ये प्यार है नहीं, ये उसके अहंकार का, उसके ईगो का एक मुखौटा है।
बिल्कुल, वो अपने बच्चों को अलग इंसान की तरह देखता ही नहीं है, वो तो जैसे वो उसकी परछाई है, उसके भाषणों के लिए एक ऑडियंस है।
और उसकी वो अपनी बनाई हुई भाषा,
हाँ, सैम स्पीक,
वो तो और भी अजीब है। मतलब वो बचकानी बातें, अजीब अजीब से नाम रखना,
सुनने में शायद मजेदार लगे पर असल में ये बहुत खतरनाक है। ये भाषा, ये कंट्रोल का एक हथियार है, वो एक भाषाई पिंजरा बना देता है अपने परिवार के चारों तरफ।
एक मिनट, मुझे ये समझना है, क्या वो ये सब जानबूझकर करता है? मतलब क्या उसे पता है कि वो एक धोखेबाज है?
यही तो उसे एक डरावना बनाता है। वो पूरी ईमानदारी से ये मानता है कि वो एक संत है।
अच्छा।
हाँ, वो जो कुछ भी करता है, चाहे बच्चों को घंटों भूखा रख के लंबे लंबे भाषण देना हो, उसे लगता है कि वो ये सब उनके भली के लिए कर रहा है। वो एक ऐसा तानाशाह है जिसे अपनी तानाशाही से प्यार है।
तो एक तरफ ये खुद को संत समझने वाला तानाशाह है, तो फिर इस दुनिया में उसकी पत्नी हैनी की क्या जगह है?
अगर सैम एक चमकता हुआ आदर्शवादी झूठ है, तो हैनी एक कड़वी चुपती हुई सच्चाई है।
वो एक अमीर घर की बेटी थी, है ना?
बिल्कुल, उसकी दुनिया कभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वो एक ऐसे दलदल में फंसी है जहां प्यार नहीं है, पैसों की तंगी है, और मातृत्व एक बोझ बन गया है।
सैम के आदर्शों के ठीक उलट।
हाँ, हैनी की दुनिया घर की गंदगी, कर्ज और गहरी निराशा से बनी है। उसका गुस्सा, उसकी हताशा, वो बस चीखने, चिल्लाने और ताने मारने में निकलती है।
लेकिन क्या हम हैनी को सिर्फ एक बेचारी विक्टिम कह सकते हैं? वो खुद भी तो अपने बच्चों पर बहुत जुल्म करती है।
ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और उपन्यास इसी को बहुत ईमानदारी से दिखाता है। हैनी शिकार भी है और शिकारी भी।
मतलब
वो सैम के अत्याचार की शिकार है, लेकिन वो अपनी कड़वाहट का जहर अपने बच्चों पर भी उगलती है, खास तौर पर लुई पर।
और इन दोनों के बीच, सैम के झूठे आदर्श और हैनी की कड़वी हताशा के बीच पिस रही है इस कहानी की असली हीरोइन लुईसा, लुई।
हाँ लुई, हम इस पूरे पागलपन को उसी की आंखों से देखते हैं। वो सैम की पहली शादी से हुई बेटी है, इसलिए परिवार में हमेशा एक बाहरी इंसान की तरह ही रहती है।
उसे बदसूरत और अजीब समझा जाता है।
हाँ, वो हैनी की नफरत का आसान निशाना है और सैम के घुटन भरे प्यार का सबसे बड़ा प्रयोग। लेकिन लुई के अंदर एक चीज है जो उसे टूटने नहीं देती।
उसकी कल्पना।
बिल्कुल, उसकी कल्पना और उसकी बुद्धि। वो इस पागलपन से बचने का रास्ता लिखने में ढूंढती है। वो नाटक लिखती है, कहानियां गढ़ती है।
तो ये सिर्फ एक बच्ची के बड़े होने की कहानी नहीं है, ये एक कलाकार के जन्म की कहानी है।
सही कहा। वो भाषा को, जिसे उसका पिता कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी आजादी का हथियार बना लेती है।
तो हमारे पास ये तीन किरदार हैं, एक तानाशाह पिता, एक टूट चुकी माँ और एक बच्ची जो इन दोनों के बीच पिस रही है। कहानी आगे कैसे बढ़ती है? रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है इनकी?
कहानी की रफ्तार बहुत धीमी है, जैसे कोई जख्म धीरे धीरे सड़ता है। पहले हिस्से में हम उन्हें वॉशिंगटन के घर में देखते हैं। हर दिन एक जंग है, नाश्ते की मेज, रात का खाना, ये सब सैम के भाषणों और हैनी के तानों का मंच होता है।
और फिर धीरे धीरे इस परिवार के मुखौटे में दरारें पड़ने लगती हैं।
हाँ, दूसरे हिस्से में परिवार की माली हालत बिगड़ जाती है। हैनी का एक पुराना दोस्त बर्ट उससे मिलने आता है और उसकी मौजूदगी हैनी को उसकी खोई हुई दुनिया की याद दिलाकर उसके गुस्से को और भड़का देती है।
और इसी दौरान लुई बड़ी हो रही है।
हाँ, वो अपने पिता के प्यार के पीछे छिपी क्रूरता को पहचानने लगती है। वो समझ जाती है कि उसके पिता के सारे आदर्श खोखले हैं।
और आखिर में ये परिवार पूरी तरह बिखर जाता है, उन्हें अपना घर खोना पड़ता है।
हाँ, और वो एनापोलिस के एक टूटे फूटे बदबूदार घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हैनी उसे मजाक में स्पा हाउस कहती है।
वो घर तो जैसे उनके पतन का प्रतीक बन जाता है।
बिल्कुल, वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी उनकी नैतिक मौत का एक जीता जागता सबूत है। और वहीं उस बदबूदार घर में कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है,
जहां हैनी पूरी तरह टूट जाती है।
हाँ, उसे सैम के एक छोटे से अफेयर के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वो बार बार मरने की बात करती है।
ये तो दिल दहला देने वाला है। और लुई लुई इस पर क्या करती है?
लुई, जिसने अपने पिता से ही एक तरह का वैज्ञानिक और भावनाओं से परे होकर सोचने का तरीका सीखा है, वो इस पारिवारिक समस्या का एक तार्किक हल निकालने का फैसला करती है।
तार्किक हल?
हाँ, वो एक कप चाय में साइनाइड मिलाती है
क्या?
और उसे हैनी के सामने रख देती है।
मतलब वो अपनी माँ को मारना चाहती है?
उसका इरादा शायद इससे भी ज्यादा भयानक है। वो सोचती है कि उसके माँ बाप दोनों ये जहर पीकर एक तरह का सुसाइड पैक्ट कर लेंगे और सारे बच्चे इस रोज रोज के नर्क से आजाद हो जाएंगे।
हे भगवान!
पर ऐसा होता नहीं है। अकेले हैनी ही वो जहरीली चाय पीती है और उसकी मौत बच्चों के सामने बहुत दर्दनाक तरीके से होती है।
ये तो सोचकर ही रूह काम जाती है। और सैम की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर?
सैम हमेशा की तरह एक पल में इस भयानक त्रासदी को भी अपनी महानता की कहानी में बदल देता है।
खुद को एक दुखी पीड़ित पति की तरह पेश करता होगा।
बिल्कुल, लेकिन इस बार एक फर्क है। लुई अब उसके धोखे में नहीं आती, वो सच्चाई जानती है।
और वो घर छोड़ देती है।
हाँ, उपन्यास के आखिरी पन्नों में लुई एक छोटा सा बैग पैक करती है और उस घर से हमेशा के लिए निकल जाती है, एक अनजान भविष्य की तरफ, एक ऐसी आजादी की तरफ जिसकी उसने बहुत बड़ी और भयानक कीमत चुकाई है।
ये कहानी हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है। ये दिखाती है कि कैसे आदर्श परिवार का विचार ही अपने आप में एक झूठ हो सकता है।
हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ भावनाओं का दमन होता है। पोलिट परिवार तो जैसे एक छोटा सा देश है जिसका तानाशाह सैम है।
और ये प्यार की परिभाषा पर भी सवाल उठाती है। सैम का प्यार दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के अहंकार को सहलाने के लिए है।
ये एक चेतावनी है कि कैसे प्यार जब कंट्रोल करने की इच्छा से जुड़ जाता है तो वो सबसे विनाशकारी ताकत बन सकता है।
लेकिन अंत में ये लुई की कहानी है। हैनी उस सिस्टम में फंसकर तबाह हो जाती है, पर लुई उसी सिस्टम के खिलाफ बगावत करके अपनी पहचान बनाती है।
वो हमें दिखाती है कि सबसे घुटन भरे माहौल में भी कला और कल्पना इंसान की आत्मा को जिंदा रख सकती है।
ये उपन्यास हमें दिखाता है कि प्यार और परिवार की पवित्र धारणाओं के पीछे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है।
और साथ ही ये लुई की कहानी के जरिए इंसान की हिम्मत और आजादी के लिए कला की ताकत का एक यादगार सबूत भी पेश करता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।